नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन को शुरू करने से पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
उस खुदाए पाक के साए में है कितना सुकून, उस खुदाए पाक के साए से कहूं। उस खुदाए पाक के खुदाए पाक के साए में है कितना सुकून, वो मेरा घर है पना मेरी, मैं ये सबसे कहूँ उस खुदाए पाक के। चाहे दिन के तीर हो या रात की है बात हो, तुझको छू भी ना सकेंगे चाहे जो हालात हो। इस तरफ कितने खुदाए पाक के साए में है कितना सुकून, वो मेरा घर है पना मेरी, मैं ये सबसे कहूँ उस खुदा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर में रह करके कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए मेरा इंतजार करते हैं। मैं अपने उन श्रोताओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। इसके साथ आप सबों का भी स्वागत करता हूँ। आपको बता दूं कि हम इन दिनों में बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि दानियल के दर्शन में अब एक दो सिंह का मेढ़ा है जिसका एक सिंह दूसरे सिंह से बड़ा हो गया और फिर एक बकरा भी है जिसके सिर पर एक ही सिंह है। मेढ़े ने तीन दिशाओं को जीता परंतु इस बकरे ने पश्चिम दिशा से आकर उसका दमन किया। इस बकरे का स्वभाव बहुत उग्र था और उसकी गति इतनी अधिक थी कि वह धरती पर पांव नहीं रखता था। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हमने इस दर्शन में देखा। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम क्या सीखते हैं। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और आपके जीवित वचन को समझना बहुत कठिन है, दर्शन की बातों को समझना कठिन है, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज हम जो कुछ भी आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से आप हमारे श्रोताओं की रक्षा करें और हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन श्रोता मित्रों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में हैं और आपके वचन को सुन रहे हैं। पिताजी, आप उन्हें छुइए और चंगाई प्रदान कीजिए ताकि वे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से तंदुरुस्त होकर आपके नाम को महिमा देने पाएं। हम इससे प्रत्येक को भी आप आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम इन दिनों दानियल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने बकरे और बेढ़े के दर्शन के बारे में देखा था और आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेढ़ा मादी फारसी राजाओं का प्रतीक है और बकरा सिकंदर महान का प्रतीक है। तो आइए आप मेरे साथ दानियल नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 8 पद को निकाल लीजिए। दानियल नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तब उसका खड़ा सिंह टूट गया और उसके बदले देखने योग्य चार सिंह निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। मेरे मित्रों, जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंह टूट गया। उसका सिंह किसने तोड़ा? मनुष्य तो उस सिंह को तोड़ने में सामर्थ्य नहीं था। हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व सिकंदर के पांव तले था। उसके बारे में कहा जाता है कि प्राचीन संसार को जीत लेने के बाद वह रोया था क्योंकि अब जीतने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन रात में उसने बहुत शराब पी ली थी जिसके बाद उसे ज्वर चढ़ जाने से बेबीलोन में ही उसकी मृत्यु हो गई। वह मात्र 32 वर्ष का था। 323 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। लिखा है कि जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंह टूट गया। बेबीलोन, मादी फारसी और यूनान तीनों ही के पतन का कारण शराब थी। मेरे प्रियो, शराब देश को पतन के गर्त में ले जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिकंदर महान भी इसके अधीन हो गया। शराब पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपए व्यय किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं, परंतु कितने परिवार इससे बर्बाद होते हैं। मेरे मित्रों, सिकंदर महान शराब का आदि था, इस कारण उसके महान साम्राज्य का पतन हुआ। उसने संसार को तो जीत लिया था, परंतु वह सिकंदर महान को नहीं जीत पाया। लिखा है, उसके बदले देखने योग्य चार सिंह निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। सिकंदर के मरणोपरांत उसका राज्य चार भागों में विभाजित हो गया था। अध्याय 7 के चीते के चार सिर के रूप में देखा था। ये चारों सेनापति थे, कसांदर, सिकंदर का बहनोई ने यूनान और मकीदुनिया का क्षेत्र संभाला। लिसीमेकस ने एशिया माइनर संभाला, जो तुर्किस्तान में है, और सेल्यूकस ने उसके राज्य का संपूर्ण पूर्वी प्रदेश संभाला, और तोलमी ने मिस्र और उत्तरी अफ्रीका पर अधिकार किया। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चार दिशाओं में चार सेनापति उसके अधिकारी हो गए। और तब हम यहाँ आगे पढ़ते हैं दानियल 8 अध्याय के 9 पद में, फिर इनमें से एक छोटा सा सिंह और निकला, जो दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। लिखा है, शिरोमणि देश अर्थात इसराइल। यह छोटा सिंह पिछले अध्याय में वर्णित छोटा सिंह नहीं है। वह छोटा सिंह चौथे साम्राज्य से उदय हुआ था, परंतु यह छोटा सिंह तीसरे साम्राज्य से उगा था। यह सिंह ऐतिहासिक है, जबकि अध्याय 7 का छोटा सिंह भविष्य की घटना है। यह छोटा सिंह सेल्यूकस के राजवंश का था। एंतियोकस महान का पुत्र एंतियोकस चतुर्थ या पागल राजा था। वह भी विक्षिप्त शासक था। मेरे मित्रों, एंतियोकस 175 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा और यरूशलेम पर आक्रमण किया। उसने यहूदियों का सर्वनाश करने का प्रयास किया। इसी के राज्य काल में मैकेबी पंथ का उदय हुआ। उसने यरूशलेम के मंदिर के पवित्र स्थान में बृहस्पति की मूर्ति को स्थापित करवाई थी। यह प्रथम घृणित वस्तु थी। उसने सब पवित्र पात्रों पर सुअर की तरी डलवा दी थी, अर्थात सुअर के मीट से उसको अपवित्र किया था। तब हम आगे पढ़ते हैं दानियल नबी की पुस्तक के 8 अध्याय और 10 पद में लिखा है, वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। मेरे मित्रों, इस पद की टीका या व्याख्या बहुत कठिन है। मेरे विचार में एंतियोकस ने परमेश्वर को चुनौती दी और उसे यरूशलेम तथा मंदिर जीतने की अनुमति मिल गई। इस युद्ध में अलौकिक शक्तियां भाग ले रही थी, क्योंकि एंतियोकस के कुछ विजय अभियान आश्चर्यजनक हैं। यदि ये घटनाएं सच हैं, तो निश्चय ही शैतानी शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। दानियल की पुस्तक 8 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया। एंतियोकस बृहस्पति का उपासक था और सोचता था कि वह उसका अवतार है, अतः वह अपने आप को परमेश्वर अवर्ति भाव कहता था, यानी कि उसका रूप कहता था। दानियल 8 उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। यह परमेश्वर की इच्छा थी कि यह छोटा सिंह उभरे और समृद्धि को पाए। तब आगे लिखा है दानियल 8 अध्याय उसके 13 पद में, तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र जन मनुष्य के अतिरिक्त परमेश्वर का सृजित बुद्धि जीव, जिसे हम अलौकिक प्राणी कहते हैं। प्रसंगवश स्वर्गदूत हमें क्या कहते होंगे। लिखा है उजाड़ने वाले अपराध, अर्थात मंदिर को अशुद्ध करना। दानिय्येल नबी की पुस्तक 8 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। मेरे प्रियो, इन 2300 दिनों के अर्थ निर्धारण के विषय बहुत से मतभेद हैं। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट समुदाय के लोग प्रभु के द्वितीय आगमन जागृति से उत्पन्न हुआ है कहते हैं, जिसमें इस पद की व्याख्या करके प्रभु के आगमन की तिथि सन 1843 में निश्चित की गई थी। विलियम मिलर और उसके अनुयायी, जिनमें एलन वाइट भी थी, पृथ्वी को पवित्र स्थान समझ बैठे थे जो प्रभु के आगमन पर शुद्ध की जाएगी। मिलर निष्ठावान तो था, परंतु भ्रमित बैप्टिस्ट प्रभु का सेवक था। इतिहास ने उनकी व्याख्या को गलत सिद्ध कर दिया था। यदि 2300 दिनों को 24 घंटों के दिन के अनुसार गिने तो वह 6 और 7 वर्ष होंगे, जो एंटियोकस के सताव के आरंभ का वर्ष अर्थात 170 ईस्वी पूर्व था। यहूदा मैकेबियस, जिसका अर्थ है हथौड़ा, ने अंततः सीरिया के सेना को मार भगाया और मंदिर का शोधन किया गया और पुनः समर्पण किया गया। यह स्मृति ज्योति के पर्व के रूप में मनाई जाती है। योहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, यरूशलेम में स्थापन पर्व अर्थात ज्योति का पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यह यीशु के समय में मनाए जाने वाले पावन पर्वों में से एक था। यहूदी आज भी इसे मनाते हैं। जी हाँ, यह पर्व पुराने नियम में नहीं है, क्योंकि यह पर्व पुराने नियम और नए नियम के मध्य का समय था। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि दानिय्येल ने दर्शन तो देखे, परंतु यत्न करके भी वह उनका अर्थ समझ नहीं पा रहा था। उसी समय किसी ने जिब्राइल को पुकारा और पुकार कर कहा कि दानिय्येल को उसके स्वप्नों का अर्थ समझाया जाए। तो अब हम आगे देखते हैं दर्शन का अर्थ। दानिय्येल नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, यह बात दर्शन में देखकर मैं दानिय्येल इससे समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे उल्ले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। मेरे मित्रों, दानिय्येल दर्शन को देखकर चकित था। वह उनका अर्थ ही नहीं समझ पा रहा था कि जिब्राइल स्वर्गदूत प्रकट हुआ। बाइबल में जिब्राइल के प्रकट होने का यह पहला अवसर है। तब हम आगे पढ़ते हैं दानिय्येल 8 अध्याय के 17 पद में लिखा है, तब जहां मैं खड़ा था वहां वह मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। जिब्राइल जो अर्थ समझाएगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि एंटियोकस एपिफनस ख्रिस्त विरोधी या ख्रिस्त विरोधी का ही एक छोटा रूप है। उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। मेरे मित्रों, ध्यान दें, अंत ही के समय में, समय के अंत में नहीं। बाइबल में कहीं भी समय के अंत का उल्लेख नहीं है। अंत ही का समय वह है जिसमें भविष्यवाणी पूरी होगी और उसे हमारे प्रभु यीशु ने महाक्लेश का समय कहा है। वह मनुष्य ख्रिस्त विरोधी पाप का पुरुष और अध्याय 7 का छोटा सिंह है। यह भविष्यवाणी दो मुखी है, निकट भविष्य और दूरस्थ भविष्य की भविष्यवाणी। भविष्यवाणी को देखते हुए आज भी यह भावी घटना है। एंतियोकस तो मात्र छोटे सिंह का एक संकेत है जो अंत के समय में उभरेगा। अन्य जातियों का समय पूरा होने पर अंत समय के शब्दावलियों से यह स्पष्ट हो जाता है। मेरे मित्रों, हम दानियल 8 के 18 पद में पढ़ते हैं, जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। ध्यान दीजिए, दानियल के शरीर पर इस दर्शन का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि वह गहरी नींद में हो गया। दानियल 8 उसके 19 पद में लिखा है, तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में सब पूरा हो जाएगा। जिब्राइल एंतियोकस में स्थानीय पूर्ति को दर्शाते हुए अन्य जातियों के समय के अंत को भी समझाएगा, अर्थात अंत तक समझाएगा। दानियल 8 के 20 में लिखा है, जो दो सिंह वाला मेढ़ा तूने देखा है उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है। यहाँ सब कुछ स्पष्ट है, हमें कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। मेढ़ा निश्चय ही मादी फारसी राजाओं का प्रतीक है। तब हम दानियल 8 के 21 में पढ़ते हैं, और वह रुआर बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वह पहला राजा ठहरा। उग्र बकरा यूनान का राजा है और वह बड़ा सिंह सिकंदर महान है। दानियल 8 उसके 22 में हम पढ़ते हैं, वह सिंह जो टूट गया और उसके बदले जो चार सिंह निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से चार राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा ना होगा। दूसरे शब्दों में किसी भी राजा में वह शक्ति नहीं थी जो सिकंदर महान में थी। दानियल 8 के 23 में हम पढ़ते हैं, उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली बुझाने वाला एक राजा उठेगा। मित्रों, वह छोटा सिंह सीरिया पर राज कर रहे सेल्यूकस राजवंश का एंतियोकस एपिफनस था। इस पद की पर्याप्त व्याख्या और ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट है कि वह दुष्ट आत्मा ग्रस्त था। इस प्रकार वह भावी ख्रिस्त विरोधी की रूपरेखा भी है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 24 पद में प्रभु यीशु ने इसका उल्लेख किया है, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी वे भरमा देंगे। दानियल 8 उसके 24 पद में लिखा है, उसकी सामर्थ बड़ी होगी परंतु उस पहले राजा किसी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। पवित्र लोगों के समुदाय अर्थात इसराइल, एंतियोकस ने इसराइलियों का जो नरसंहार किया वह विश्वास करने से परे है। वह हिटलर के समान ही पाश्विक जरूर था, परंतु वह वास्तव में ख्रिस्त विरोधी की रूपरेखा है, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 13 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। दानियल 8 उसके 25 पद में हम पढ़ते हैं, उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। मेरे मित्रों, एंटीओकस आने वाला ख्रिस्त विरोधी का संकेत मात्र ही है। वह एंटीओकस द्वारा किए गए चार कामों को करने में सीमा पार कर देगा। आइए हम देखें कि वह क्या करेगा। पहली बात हम देखते हैं, चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13:17 में कहा गया है कि जिसके पास पशु का चिन्ह नहीं होगा वह क्रय विक्रय नहीं कर पाएगा। वह प्रतिशोध के साथ अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखेगा। दूसरी बात, वह मन में फूल कर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13:5 में लिखा है कि उसे बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए मुंह दिया गया। उसे 42 राज करने का अधिकार भी दिया जाएगा। तब तीसरी बात हम देखते हैं, निडर रहते हुए बहुतों का नाश करेगा। वह मेमने का स्वांग करके आएगा और शेर की नाई जाएगा। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 6 में वह सफेद घोड़े पर सवार है। ध्यान दें, उसी के पीछे युद्ध का लाल घोड़ा आ रहा है। वह झूठी शांति लाया है। और तब हम चौथी बात देखते हैं, वह हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध खड़ा होगा। वह प्रभु यीशु का विरोध करके युद्ध करेगा। ख्रिस्त विरोधी और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 13 के पशु का चिन्ह है कि वह प्रभु यीशु का विरोधी होगा। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास दानियल ने दर्शन देखे परंतु वह समझ नहीं पाया, और तब जिब्राइल दूत के द्वारा से वह सब बातों को समझ सका। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि अंतिम के समय में ख्रिस्त विरोधी एंटिओकस एपिफनस आएगा और वह परमेश्वर के लोगों को सताएगा। ये सारी बातें हमें भविष्य के रूप में दे दी गई है ताकि हम इसमें सावधान रहें और किसी भी धोखे में ना आए। मेरे प्रियो, आज हम सब परमेश्वर पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं इस बात को जान लें और वचन को पढ़ें, इसकी गंभीरता को लें, ताकि हम उस दिन के लिए तैयार पाए जाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। इसके अलावा हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद। बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद। बीते क्षणों संग रहा है, अभी है मेरे साथ। जिसने हमारे हाथ खुद का जान दिया, जिसने हमारे हाथ खुद का जान दिया, और हमारी जिंदगी को जीवन दान दिया। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद। बीते क्षणों